राधा और कृष्ण ये दो नहीं एक, और राधा और कृष्ण को ना अलग किया जा सकता है। स्वयं कृष्ण राधा जी से कहते हैं, ये सब ब्रह्म व्यवस्थ पुराण का उल्लेख बता रहा हूँ, त्वम मे प्राण अधिका राधा, त्वम मे प्राण अधिका राधा, हे राधिके तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम मेरे लिए मेरे प्राण से भी अधिक हो, और प्रेयसी प्रेयसी पा, और जितने भी हमारी प्रेयसियां हैं प्रजांगना है उन सब में तुम पड़ा हो सबसे श्रेष्ठ, और यथा तुम च तथा अहम च भेद, यथा तुम च तथा अहम, मैं और तुम, हमारे मैं और तुम ये भेद नहीं है। राधा और कृष्ण कहते हैं मैं और तुम, ये भेद हमारे में नहीं है, मतलब हम दोनों एक हैं, मैं और तुम दो नहीं है, हैं? त्वम च तथा अहम च भेदो हि नावयो ध्रुवम, ये अटल मैं बात कह रहा हूं कि हम और तुम एक हैं, हम और तुम में दो का भेद नहीं है। और कृष्ण उदाहरण देते हैं कि जैसे यथा क्षीरे च धावल्यम, क्षीर क्षीरे च, क्षीर का अर्थ होता है दूध, यथा क्षीरे च धावल्यम यथा अग्नो दाहिका सती, हे सती जैसे दूध और दूध का धावल्य, दूध की सफेदी, ये अलग नहीं, या दूध को दूध से, दूध की सफेदी को दूध से कोई अलग नहीं कर सकता, दोनों एक ही है। और जैसे यथा अग्नो दाहिका सती, जैसे अग्नि में ताप दाहिका शक्ति जो है वो और अग्नि एक है, अग्नि से कोई ताप का शक्ति अलग कर सकता है? यथा अग्नि दाहिका सती यथा पृथ्व्या गंध, जैसे पृथ्वी और पृथ्वी का गंध एक ही है, वो दो नहीं है। और तथा त्वयि संततम, ऐसे ही मैं और तुम एक है, हम कोई अलग नहीं कर सकता। और आगे कृष्ण कहते हैं, हैं? बिना बिना मृदा घटम करतु बिना स्वर्णेन कुंडलम, जैसे मिट्टी के बिना पृथ्वी के बिना कोई घट घड़ा नहीं घड़ सकता, जैसे मिट्टी के बिना कोई घड़ा को घट को नहीं घड़ सकता, या स्वर्ण के बिना कोई स्वर्ण कुंडल नहीं बना सकता, तथा त्वया बिना सृष्टि न करतु अहम शक्त, वैसे ही तुम्हारे बिना भी मैं इस सृष्टि रचना का करने में समर्थ नहीं। सृष्टि आधार भूतात्वम बीज रूपो अहम अचिन, हे राधा तुम इस सृष्टि की आधार भूता हो और मैं बीज प्रद पिता हूं। इस प्रकार इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्णा और राधा जी एक है, दो नहीं है। जैसा प्रातःकाल के सत्र में हमने सुना था कि कृष्णा जब रत्न सिंहासन पर आसित थे वैकुंठ में गोलोक में, और उनको रात विहार करने की इच्छा हुई, उनके वाम भाग से उनकी हलादिनी शक्ति का प्राकट्य, और भी हलादिनी शक्ति मूर्तिमान रूप में राधा जी, अभी समय का बहुत अभाव है इसलिए इसका विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। प्रातःकाल के सत्र में आपने वर्णन सुना है, अस्त का उपवास भी है, इसलिए इसका विस्तार से वर्णन न करते हुए मैं संक्षिप्त में वर्णन कर रहा हूँ। इसके लिए राधा शब्द का थोड़ा उच्चारण हम करते हैं, राधा इसके अनंत अनंत अर्थ हैं, कोई एक अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्र बताते हैं, विशेषकर ब्रह्म व्यवस्थ पुराण में बताया गया है कि रा शब्द उच्चारणा भक्तो, जब भक्त लोग रा शब्द का उच्चारण करते हैं, हैं? भक्तो गति मुक्ति सुदुर्लभा, रा शब्द का मात्र उच्चारण करने से भक्त वो सुदुर्लभ मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और धा शब्द उच्चारणात दुर्गे धावत तेद हरे पदम, और धा शब्द का उच्चारण करते ही इस हृदय दुर्ग में कृष्ण विराजमान हो जाए। लीला में राज शब्द का अर्थ प्रातः काल हमने सुना, रा का अर्थ होता है रा, और धा का अर्थ होता है जो रास का आधार है। बिना राधा के कृष्ण रास नहीं करता, रास का आधार है। और आगे बताते हैं आदो राधा सम उच्चार अर्थ है। आदो आदो मतलब पहले, पहले आदो राधा सम उच्चार्य थे पश्चात कृष्ण प्राप्त पर स एव पंडितो योगी गोलोकम यासी लीलया। जो पहले राधा आदो आदो मतलब पहले, जो पहले राधा के शब्द का उच्चारण करता है और बाद में कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, यहां पर ये अप्रत्यक्ष रूप से महामंत्र का उल्लेख हो रहा है। ये जो महामंत्र है उसको वेदों में, उपनिषद में, करुणतंत्र उपनिषद में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में, सभी प्राय प्रमाणिक ग्रंथों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख हुआ। जैसे ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है तो आदो राधा सम, पहले राधा का नाम लिया जाता है। तो ये जो हरे है, हरे प्रभुपाद जी कहते हरे हरा, हरा मतलब भगवान की शक्ति, राधा अलादीन शक्ति। तो पहले जो राधा का नाम का उच्चारण करता है बाद में कृष्ण का, वही पंडित है, वही विद्वान है, वही सारे शास्त्रों का सार जानता है। सब पंडितों और योगी वही सबसे बड़ा भक्त है और वो जो पहले राधा का और बाद में कृष्ण का नाम जो उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोकम याति लीलया, वो गोलोक में भगवान की लीलाओं में जाने का अधिकारी, प्रवेश पाने का अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार है राधा जी की कुछ महत्व का वर्णन किया हमने। इस पर अभी सिद्धांत के बाद इच्छा है कि कुछ लीला का वर्णन हो, साथ अभी हमने बहुत सिद्धांत सुने। लीला में जन्म लीला तो आप सब जाने हैं, और लीला विषय में हमारे कई पुराणों में अलग अलग राधा जी के प्राकट्य का लीला है। इस लोक में जो राधा जी का प्राकट्य हुआ, अनेक लीला है। कई हमारे भक्त बताते हैं कि ये अलग अलग कल्प में अलग अलग कल्प का वर्णन है। जैसे प्रातः काल में हमने विंध्याचल के यहाँ राधा जी का प्राकट्य हुआ और सूचना लेकर आई, लेकिन एक पुराण में ऐसे भी बताया गया है जहाँ संदीप मुनि की माता पूर्णमासी अपनी पुत्री गर्गी को कथा सुनाती है। तो उसमें वो बताती है कि हे गर्गी, जब विंध्याचल के यहाँ पर दो पुत्रियों का जन्म हुआ और पूतना लेकर आ रही थी, तो उस पूतना से इन दोनों पुत्रियों को मैंने ले लिया, और साथ में जो आठ पत्नियों के साथ प्रकट हुई थी राधा जी, उन सबको मैंने ले लिया, और मैंने ही वृषभानु और पीतदा सुंदरी को राधा को दे दिया, और उनके भाई चंद्रभानु और उनकी पत्नी को चंद्रावली को दे दिया, और दूसरी जो भी अस्त सखियां हैं उनको भी है, उनके माता पिता जो भी हैं उनको प्रदान किया। ये पौर्णमासी गर्मी को कथा सुनाते हैं। इसके पूर्व की एक कथा प्रातः काल में हमने सुनी, हिमाचल और विंध्याचल। एक और भी कथा आती है सूर्यचंद्र और कलावती, सूर्यचंद्र और कलावती, सूर्यचंद्र और कलावती। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा का उपासना किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इस साक्षात भगवान की सहचरी हमारी पुत्री उसमें प्रकट हो जिससे हम उनकी सेवा कर सकें, और यही दूसरे जन्म में विश्वभानु और सत्यदास ने। तो इस प्रकार अलग अलग कल्प की कई अलग अलग लीला हैं, उनकी जन्म लीला। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण साक्षात गोविंद एक बार अवतरित होते हैं, वैसे ही उनकी सहचरी है राधा जी भी प्रकट होते हैं। और भी अन्य अन्य अवतार, जैसे कृष्ण अन्य अवतार लेते हैं और अपना विस्तार करते हैं तो उन्हीं अवतारों के अनुरूप और अनुकूल राधा जी भी अपना विस्तार करके उनकी लीला विला हेतु अवतरित होती है। तो इसी प्रकार अवतरित होती है, लेकिन जो कृष्ण लीला में राधा जी का अवतरण हुआ उसमें सबको यह संदेह रहा कि राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ क्यों नहीं। और लोक की बात छोड़िए, कई कई धर्म पंथ वाले भी जिनके पास प्रमाणिक परंपरा नहीं है, प्रमाणिक संप्रदाय नहीं है, ऐसे धार्मिक पंथ भी कई आक्षेप करते, यहां तक कि विरोध भी किया गया कृष्ण के साथ राधा का अर्चन का विरोध भी हुआ कई, इसका बहुत बड़ा प्रसंग है, एक बार हमने सुनाया था। तो वैसे तो राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ था, लेकिन वो गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व विवाह का अर्थ होता है जिसका माता पिता को पता नहीं होता, ऐसे जो जाने सब विवाह होते हैं ऐसे नहीं होता, लेकिन चुपके से विवाह हो जाता है, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। और इस विवाह में विवाह ब्रह्मा जी ने, ब्राह्मण ब्रह्मा जी थे पुरोहित, और शिव जी इंद्र आदि भी आए थे, भांडीर वन में यह लीला हुई थी, लेकिन ये अंतरंग लीला थी, जब जाहिर नहीं उनका लीला नहीं हुआ। इसका कारण हमारे आचार्य लोग अपने मंतव्य में लिखते हैं कि एक पूर्व की लीला हम श्रवण करेंगे, ये गोलोक वृंदावन की लीला। गोलोक वृंदावन में भगवान जो लीला विहार करते हैं, तो एक समय की बात है कि राधा भगवान का सेवा कर रही है, सेवा करते करते इतनी भाव विभोर हो गई कि मूर्छित होकर गिर गई, इतनी भाव विभोर हो गई। लेकिन कृष्ण ने देखा कि यह राधिका तो भाव में विभोर हो गई है, तब कृष्ण वहां से खिसक गए और जाकर वे जो गिरजा नाम की गोपी थी उसके साथ भ्रमण करने लगे, लीला करने लगे। कई दिन बीत गए, लगभग 100 साल बीत गए, 100 साल तक उन्होंने विद्या के साथ लीला की। हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने तो यहाँ तक लिखा है कि 100 साल लीला की और 7 पुत्र भी उत्पन्न किए, 7 पुत्र हुए विद्या। लेकिन जब इस बात राधा जी को पता चला कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, उनके विरह में वो व्याकुल थी, तब वे ढूंढते ढूंढते गई और उनको पता चला कि ओहो यह तो विद्या के साथ है। जैसे ही राधा जी वहां गई और विद्या को पता चला कि वो राधा जी आ रही है, तो वो तुरंत कृष्ण को छोड़कर नदी के रूप में होकर बहने लगी और कृष्ण वहां से अंतर्हित हो गए। और उसके बाद राधा जी वापस चली आई, लेकिन कृष्ण वापस कुछ समय बाद आए और विद्या से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, तुम वापस साक्षात उसी रूप में हो जाओ, मैं और तुम्हारे साथ लीला करना चाहता हूं। तब वे वापस साक्षात उस रूप में हुई और उनके साथ अनेक वर्षों तक और भगवान ने लीला किया। उसके पश्चात राधा जी फिर ढूंढती ढूंढती आई तो फिर से कृष्ण अंतर्हित हो गए और वो उनके रूप में रहने लगी। तब राधा जी बहुत दुखित हो गई और वहां से वापस चली आई और राधा जी ने अपने सभी सखियों से कह दिया कि अब अगर यहां कृष्ण आए तो उनको प्रवेश नहीं देना है, वो लंपट है, मैं उनको जान गई, उनके विरह में मैं कितनी दुखी हूं, वो विद्या के साथ विहार कर रहे हैं, उनको कितना दुख दे रहे हैं, हैं? वो अंदर से भी काले बाहर से भी काले हैं, उनका विश्वास नहीं किया जा सकता, अब मैं उनको कह दो कि राधा जी तुमको देखना नहीं चाहती, तुम भी राधा जी को मत मिलने की चेष्टा करो, इसका कठोर आदेश देकर राधा जी चले गए। सब सखियों ने कठोर निर्णय ले लिया कि अब कृष्ण यहाँ आएंगे तो हम प्रवेश करने नहीं। कृष्ण को जब इस बात का पता चल गया तो राधा जी के जो भाई हैं श्री राम, कृष्ण ने उनको बुलाया और कहा, हे श्री राम, तुम तो जानते हो मैं राधा के बिना नहीं रह सकता, तुम हमारे मिलन का कोई उपाय करो, जाओ राधा जी से कुछ सांत्वना देकर उनको मनाओ और मैं उनसे मिलना चाहता हूं दादर पहुंच। तो श्रीदाम आए राधा जी के वास पर, लेकिन उन्हें वहां रोक दिया। बहुत आग्रह किया कि मैं राधा से मिलना चाहता हूं, राधा से मिलना है। तब राधा जी ने आकर कहा कि क्या काम है, तो कहा हे राधे, क्या तुम कृष्ण को नहीं जानती? ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सभी देवी देवता जिनका गुणावली करते हैं, हैं? बड़े बड़े महात्मा जिनका जिनके चरणों का शरण लेते हैं और उत्तम श्लोकों द्वारा जिनका आवृत्ति हुआ है, जो जिनके एक प्रकृति के टेढ़ा होने से इस संसार का प्रलय हो जाता है, जो अपने संकल्प से इस संसार का सृष्टि करते हैं, ऐसे कृष्ण को क्या तुम नहीं जानती? वो तुम्हारे लिए कितने अधीर हैं, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। राधा जी ने कहा श्रीदाम, ये बातें छोड़ो, तुम क्या समझते हो मैं कृष्ण को नहीं जानती? मैं कृष्ण को अच्छी तरह जान गई हूं, मैं जानती हूं। वो बहुत लंपट हैं, वो कुटिल हैं, उन्होंने हमारे हृदय को बहुत दुखाया है। जाओ कह दो मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। और तुम भी यहां आकर कृष्ण का गुणावली कर रहे हो, मेरा भाई होकर उनका गुणावली कर रहे हो, ये तुम्हारी आसुरी वृत्ति है। तुम कृष्ण का गुणगान मेरे सामने करते हो, मैं उनका मुख तक देखना नहीं चाहती, चले जाओ यहां से। लेकिन फिर भी श्रीदाम विनती करने लगे कृष्ण के लिए, तो राधा जी ने श्रीदाम को श्राप दे दिया, तुम उसकी पैरवी कर रहे हो, ये तुम्हारा आसुरी वृत्ति है, जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लेकर असुर बन जाओ। तुम मेरे भाई हो, मेरा पक्ष लेना चाहिए, तुम उस लंपट का पक्ष लेते हो। तो इस प्रकार श्राप दे दिया, तो श्रीदाम भी कुपित हो गए कि मैं कृष्ण की, तुम्हारे हृदय को जानता हूं कि कृष्ण के बिना तुम नहीं रह सकती, तुम दोनों को मिलाने के लिए चेष्टा कर रहा था, लेकिन तुम मुझे गलत समझ कर इसका श्राप दिया, मृत्यु लोक में जाने का श्राप दिया, तो मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि तुम भी मृत्यु लोक में जाओगी। और इतना ही नहीं, तुम्हारा वहां कृष्ण के साथ विवाह नहीं होगा और 100 साल तक कृष्ण के विरह में आंसू बहाती रहोगी। इस प्रकार जब श्रापबाजी हो रहा था, वही कृष्ण आ गए। जब श्रापबाजी शांत हो गया तो दोनों दुखी हो गए, राधा जी और श्रीदाम दोनों दुखी हो गए। हाँ, हमने ये आवेश में आकर क्या कर, जैसे वैकुंठ में चतुर कुमार और जय विजय के बीच में श्रापबाजी हुआ, और जब श्रापबाजी शांत हो गया तो कृष्ण दौड़ कर, ये सब कुछ होने के बाद कृष्ण, तो कृष्ण ने आकर कहा, जब दोनों दुखी थे तो कृष्ण ने दोनों को शांत बना दिया, ये सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है, आप लोग दुखी मत होइए। श्रीदाम को कहा कि भले ही तुम असुर बनकर जन्म लोगे, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और वो श्रीदाम जलंधर के रूप में असुर हुए। और राधा जी से कहा कि हे राधे, तुम इस पृथ्वी पर अवतरित होगी, मैं भी आऊंगा और हम दोनों को इस पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आ गया है, ये मेरी इच्छा थी। मैं अकेला जाकर वहां लीला नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी साथ में आओ और इनका श्राप भी सफल। लेकिन राजा जी ने कहा मेरा विवाह अन्य के साथ और आपके साथ नहीं, तो भगवान ने सांत्वना दी कि वो कोई अन्य नहीं होगा, मेरा ही विस्तार होगा जिसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। हाँ, और इस प्रकार राधा जी से कहा कि अब समय आ गया है कि हम इस पृथ्वी पर, मैं अवतरित हो रहा हूँ और तुम भी मेरी दुला, तुम भी अवतरित हो, हम दोनों अवतरित होंगे। तब राधा जी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं इस गोलोक वृंदावन को त्याग कर वहां कैसे आ सकती हूँ? मैं वृंदावन के बिना नहीं रह सकती, वहां यमुना का पुलिन, गिरी गोवर्धन है, और ये वृंदावन कहाँ है? तो राधा जी के आग्रह पर कृष्ण ने कहा कि हमारे जाने के पूर्व ये भी वहां प्रकट होगा, और ये ब्रज प्रकट होगा और इसी भूम वृंदावन में हम लीला करेंगे। इस प्रकार कृष्ण के आग्रह पर और श्री राम जी के अपराध को लगा इसके अनुसार, ये सब भगवान की इच्छा है। जैसे जय विजय को चंद्र कुमारों ने वैकुंठ में श्राप दिया, वो स्थान नहीं है कोई श्रापबाजी का या क्रोध करने का, वो स्थान नहीं है, लेकिन भगवान की लीला शक्ति से ये सब संपन्न होता है, भगवान की इच्छा से। जो जय विजय को श्राप मिला उसमें भगवान का वीर रस स्वादन करने का इच्छा था, इसलिए ये जब चार कुमार और जय विजय के बीच में श्रापबाजी हुआ। यहाँ पर जो श्रीराम और राधा जी के बीच में हुआ, तो भगवान प्रक्रिया रस का स्वादन करना चाहते थे, ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए ये यहाँ पर घटना हुई। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि फिर कृष्ण भी प्रकट हुए और आज के दिन राधा जी भी इस धरा धाम पर भगवान की लीला में सहायक करने के लिए प्रकट हुए। और इसके बाद जब विवाह का बात आता है, तो वैसे तो विवाह का बात हम इसलिए करते हैं कि यहाँ संसार में जो हमारे विवाह संबंध होते हैं भौतिक है, देह के स्तर पर है, लेकिन कृष्ण राधा जो है ये देह के स्तर के नहीं, उनकी सब लीलाएं दिव्य है। कृष्ण का कोई भी भौतिक आकर्षण नहीं है या कोई भी क्रिया भौतिक नहीं है, वे तीन गुणों से परे हैं। हमारे विवाह संबंध जो भी संबंध है वो तीन गुणों के अंदर है, त्रिगुणात्मक है, लेकिन भगवान की जो लीला है इससे परे है। लेकिन चूंकि हम इस त्रिगुणा तीन गुणों के अंदर बंधे हुए हैं, इसलिए हम भी ऐसा सोचते कि नहीं राधा और कृष्ण का भी विवाह होना, वो तो एक ही है, विवाह क्या। लेकिन फिर भी कहते हैं लोक का क्या, लोक में भगवान, तो लोक में ऐसे तो भगवान राधा और कृष्ण का विवाह हुआ, लेकिन जो अभिमन्यु के साथ भगवान का विवाह हुआ वो अभिमन्यु भी और कोई नहीं, कृष्ण का ही विस्तार थे। यहां भी आचार्य बताते हैं कि कृष्ण की ये प्रक्रिया भाव की सेवा करने के लिए अभिमन्यु का भी एक लाभ। सभी भगवान की लीलाओं में अलग अलग पात्र बन के कृष्ण की सेवा कर रहे हैं अलग अलग रसों में। माता नंद और यशोदा ये वात्सल्य भाव में उनकी सेवा करते हैं, सब गोपगण उनकी साक्ष्य भाव में सेवा करते हैं, गोपियां माधुर्य भाव में सेवा करती हैं। इसी प्रकार यह अभिमन्यु भी भगवान की प्रक्रिया भाव का स्वादन करने के लिए भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार अभिमन्यु के साथ राधा जी का विवाह हुआ था, ये भगवान ने प्रक्रिया भाव का स्वादन किया। कई घटना लीला उस विवाह में भी कई लीला है। एक प्रसिद्ध लीला है किस प्रकार भगवान प्रक्रिया भाव का स्वादन करते थे, प्रक्रिया तो भाव और स्वकीय भाव। द्वारका में भगवान स्वकीय भाव का स्वादन करते हैं, ब्रज में प्रक्रिया भाव का स्वादन करते हैं। हम लोग समझते हैं कि स्वकीय भाव जो है वो उचित है, ठीक है पत्नी के साथ, लेकिन जो इस जगत में जिसको नीचा माना जाता है वो भाव आध्यात्मिक जगत में सर्वोपरि। प्रक्रिया भाव को यहां पर निम्न माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रक्रिया भाव सर्वोपरि। और ये जो ब्रज की लीला है इसमें कोई भौतिक देह आकर्षण नहीं। वैसे कृष्ण राधा के साथ विवाह करके ये सबके शंकाओं का समाधान कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे एक और भी रहस्य था। अगर पत्नी होती है और पत्नी पति के प्रति समर्पित रहती है या पत्नी को पति को संतुष्ट करती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपना धर्म है करती है। लेकिन गीता में भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजा। इस सभी धर्मों का परित्याग करके, जैसा उद्धव जी कहते हैं सदुस्तज्जे आर्यपथ स्वजन आर्यपथ, ये सभी धर्मों का परित्याग करके किस प्रकार भगवान की शरण ली जाती है, इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण है ये ब्रज की लीला भगवान। तो भगवान के प्रति कोई कहते हैं अरे भाई ये धर्म है वो धर्म, उसको त्याग कर हम कैसे भगवान की शरण में जा सकते हैं। माम एकम शरणम ब्रज, जैसे ब्रजवासी लोग आए, जैसे ब्रजांगना आई, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए किसी भी धर्म का परित्याग किया जा सकता है। वेद धर्म का परित्याग किया जा सकता है, आर्य धर्म का, लोक धर्म का। यही तो गीता का सार है। गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्यम। तो इस प्रकार इस लीला में भगवान ने यह भी प्रत्यक्ष दिखाया है। और जो अभिमन्यु के साथ भगवान का विवाह हुआ पौर्णमासी के आग्रह पर, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ और उसमें कृष्ण ने ही अपना जब संस्कार किया था और सभी गोप बाल कृष्ण ही बने थे, गाय के बछड़े गोप सब ओरिजिनलों को तो ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए, लेकिन कृष्ण ने अपना विस्तार करके जब वो बने तो उसी समय पौर्णमासी का बाद जो था ब्रज में कोई नहीं। पौर्णमासी के आग पर इस प्रकार अभिमन्यु के साथ राधा जी का विवाह हुआ और उसमें भी भगवान ने बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं की। एक समय की बात है कि कृष्णा दूर से ही देख रहे थे अभिमन्यु का वेश बनाकर कि घर से कब अभिमन्यु निकले और मैं इनके घर में प्रवेश करूं, देख रहे थे। तो देखा कृष्णा ने कि अभिमन्यु बाहर निकले, तो उसी समय कुछ देर बाद कृष्णा अभिमन्यु का रूप लेकर राधा जी के साथ कुटीला और उनकी ननद जटीला हमारा भाई आ गया अंदर गए। वे राधा जी के साथ अंदर बैठे हैं और कुछ देर बाद फिर वह ओरिजिनल अभिमन्यु आया। तो उस समय जटीला कंडे फेंक रही थी, गोबर के कंडे फेंकते हैं ना। अरे तुम कौन हो? मैं अभिमन्यु हूं जटीला। तुम अभिमन्यु नहीं, मैं जान गई तुम वही लंपट कृष्णा है, ऐसा रूप लेकर आया है, मैं तेरी करतूत जानती हूं। नहीं, मैं तुम्हारा भाई अभिमन्यु नहीं। जाते हो कि नहीं? अरे क्या जाता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं राधा से मिलना चाहता, तुम मिलना चाहते मेरे को मालूम। और ऐसे जो गोबर हाथ में था दया धाम से ऊपर, अरे बाप रे, वो माँ को बुलाने लगा, माँ माँ देखो ये। तो कुटी लाई झाड़ू लेकर, तू अभिमन्यु है, अभी दिखाती हूँ, जाता है इधर से के। तो इस प्रकार बाहर चल रहा है, अंदर राधा और कृष्ण हंस रहे हैं, राधा जी हंस रहे, कृष्ण भी हंस रहे हैं, बहुत अच्छा। इस प्रकार भगवान प्रक्रिया अवकाश प्राप्त। एक बार रात्रि में राधा जी कृष्ण से मिलने के लिए चली गई और आते आते बहुत देर होने देर हो गई। अरे देर हो गई, अब जल्दी घर जाना है और जटीला कुटीला जग जाएंगे। तो उनके जाने से पहले जल्दी जल्दी में राधा जी ने अपना दुपट्टा तो वहीं रह गया और कृष्ण का पीताम्बर ओढ़ कर आकर अंदर आकर सो गए। कुटीला जल्दी, अरे ये तो पीला दुपट्टा कहां है, ये तो पीताम्बर है कृष्ण का, निश्चित तुम कृष्ण को मिलने के लिए गई थी। राधा ने कहा नहीं नहीं, ये मेरा दुपट्टा। बोला नहीं, तुम्हारा दुपट्टा नहीं है, ये तो कृष्ण का है। बोला नहीं, आपको शायद कम दिख रहा है, उम्र हो गई, क्या बात करते हो, हमको कम दिख रहा है। तब तक तो वहां जो लीला में उनकी सखियां विशाखा ललिता उनको पता चल गया कि अरे राधिका का दुपट्टा यहाँ रह गया, अब उनके घर पे जाकर बहुत हल्ला मच जाएगा, राधिका को कष्ट देंगे। तो वे चुपके चुपके दुपट्टा को छुपा कर वहां आ गई घर पे आने, लेकिन वहां पर कुटीला क्या करें क्या करें। तो राधा जी ने कहा देखो ये मेरा ही दुपट्टा है, तुमको कम दिखता है, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम्हारी जो सखी है बाजू में रहती है उसको बुला के लाओ, वो ठीक देखती है, उसको दिखा दो। तो कुटीला गई बाजू में और जाकर कहा मेरे घर चलो, तो वो राधिका मानती नहीं है मेरी बात, देखो वो दुपट्टा कैसे रंग का है। तो वो बाजू में बुलाने गई, तब तक उनकी सखियों ने आकर वो दुपट्टा दे दिया, वो कुटीला ले लिया और देख रहे भाग गई। वो कुटीला लेकर आई बाजू वाली उसकी सहेली को, देखो तो हाँ ये तो नीले रंग का दुपट्टा है, इसका नीला है क्या पीला है? अरे ये नीला है, तुम ठीक देखो नीला है। ओ मेरे को शायद ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान और राजा प्रतिया भाव का स्वादन करते थे। वास्तव में भगवान की ये दिव्य लीलाएं हैं। हाँ तो भगवान भी एक व्यक्ति, ये भी पुरुष, लेकिन वो परम पुरुष हैं, वे पूर्ण शुद्ध और दिव्य स्तर पर हैं। तो जैसे हमारे में इच्छा रहती है ऐसे उनके में भी इच्छा है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं वो अशुद्ध हैं, उनकी जो भी इच्छाएं लीलाएं वो शुद्ध हैं। और जब हमारी हमारा चित्त भी शुद्ध हो जाता है तब हम इन लीलाओं को समझ सकते हैं। लोग अपने दिमाग का जो कूड़ा कचरा है वो भगवान की लीलाओं पर छोड़ते हैं, बिना शुद्ध हुए है वो कोई भगवान की लीलाओं को व्रज लीलाओं को समझ नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम हमको आपको शुद्ध करने की आवश्यकता है। भक्तों के संग में रहकर ये जो भगवान के चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया महामंत्र है उसका कीर्तन जप करके, भक्ति के नियमों का पालन करके और भक्तों का संग करके सर्वप्रथम हम जब शुद्ध होंगे, हमारा चित्त शुद्ध होगा, तब हम भगवान की इन लीलाओं को समझ सकते हैं। इसलिए हमको साधन में बिल्कुल निष्ठापूर्वक साधन करना चाहिए, इन साधनों को अपनाना चाहिए और इस प्रकार हमको शुद्ध करके भगवान की इन शुद्ध लीलाओं का हम स्वादन कर सकते हैं। तो चूंकि आप सबका पेपर तक का उपवास है इसलिए हम बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं, यहीं हमारी वाणी को विराम देते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार वे कृष्ण की सेवा अनन्य भाव से करते हैं, कृपा करके हमको भी कृष्ण की सेवा प्रदान करें। प्रभुपाद के अपने प्रवचन में कहते हैं, राधा जी के प्रवचन में, कि कोई भक्त जाकर जब राधा जी के चरणों में प्रार्थना करता है कि हे राधे हे देवी हम हमारे पर कृपा करो और हमको भी कृष्ण की सेवा प्रदान करो, तो तुरंत राधा कृष्ण से हमारा सिफारिश करती है कि कृष्ण ये तुम्हारा एक और उत्तम भक्त आया। जब राधा जी इस प्रकार कह देती हैं तो कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार राधा जी के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि वे हमें कृष्ण की सेवा में संलग्न करें और उनकी कृपा से ही हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस महोत्सव में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए प्रसाद है, शांति सभी प्रसाद पाइए और राधा कृष्ण का गुण गाइए। जय श्री श्री राधा रानी की, राधा श्री महामहोत्सव की।
सभी लोग बैठ रहिए शांति से, तो हम सबसे पहले धन्यवाद प्रकट करेंगे जिन्होंने